ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے، اور آج بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا اہم گناہ جو آج ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ منتشر، اور جو ہمارے آپسی بگاڑ، انتشار اور آپسی جھگڑے اور لڑائیوں کا اور بدگمانیوں کا سبب بنتا ہے، اسی کا تذکرہ کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر اس کو گناہ تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہے بہت ہی خطرناک. یہ وہ گناہ یہ ہے کہ ایک انسان کچھ گفتگو کر رہا ہے اپنے کسی آدمی سے، اپنے کسی دوست سے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی باتیں آپ سنیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، بازو میں جا کے کھڑے ہو جائیں، کان لگائیں، چہرہ دوسری طرف کر لیں، یا گھر میں بات کر رہا ہے تو جا کے دروازے پہ کان لگائیں. یہ انسان نہیں چاہتا کہ ہماری باتیں کوئی سنے، لیکن اس کے باوجود کوئی زبردستی سننے کی کوشش کرے، کان لگا کے سنے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. شاید اس کی اس طرح سے بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک دوسری مثال دیں جو آج عام طور پر ہے. آپ اگر کہیں باہر ٹیلی فون کرنے لگیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے معلوم بتائے کہ حکومت نے ان کو جاسوس متعین کیا ہے، وہ آ کر کے وہاں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست احباب سے کوئی بات کرنی ہو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کمرے میں ٹیلی فون ہے، آپ کے گھر میں ہے، لیکن سوچتے ہیں گھر میں کریں گے، ڈیرے سے کریں گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس لیے آپ لوگوں سے چھپانے کے خاطر، اپنی مخصوص بات کرنے کے خاطر باہر چلے گئے، اور وہاں بھی کوئی آدمی کان لگا کر کے سننا چاہیں، سننے والا اور دیکھنے والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی بدترین گناہ شمار کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں. ایک متفق علیہ حدیث، یعنی جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا वला तजस्सु वला तनाजसु वला तहासदु वला तबागदु वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना। अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि हम सारे कलमा गो आपस में भाई भाई बन करके रहे। इन्नमल मुमिनून इख्वान, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह ताला इस बात को बहुत पसंद करते हैं कि हम सब आपस में भाई भाई बन करके रहें। अल्लाह ताला इसको हुक्म देते हैं, इसीलिए हमारे अंदर हर वो चीज जो बिगाड़ पैदा करने वाली होती है, भाई बंदी और भाईचारगी में जो चीज बिगाड़ पैदा करने वाली होती है, उन तमाम चीजों से इस्लाम ने हमको मना कर दिया है। क्यों? आपस में मिल करके रहना, भाई भाई बन करके रहना, मेल मलाप मोहब्बत और ईसार और कुर्बानी के जज्बे के तहत जिंदगी गुजारना हर मुसलमान के लिए जरूरी करा दिया गया है। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बीरून दरिया कुछ नहीं, हम सबको मिल मिल करके रहना है। अब अगर कोई चीज, बल्कि हर वो चीज जो हमारे आपस के भाईचारगी में जहर बन जाए, आग छिड़कने वाली हो और उसमें बिगाड़ पैदा करने वाली हो, उन तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम मुसलमानों के ऊपर हराम करा दे दिया है। फरमाया आपने इय्याकुम वज़न्ना फ़इन्ना वज़न्ना अकज़बुल हदीस। इय्याकुम, मुसलमानों अपने आप को बचाओ, इय्याकुम बचाओ अपने आप को, इय्याकुम वज़न्न, मुसलमानों अपने आप को बचाओ। किससे बचाओ? बदगुमानी से, वहमो गुमान, किसी के मुतालिक जल्दी बदगुमानी कायम ना करो। इय्याकुम वज़न्न फ़इन्ना वज़न्न अकज़बुल हदीस, चूंकि अब सबसे बड़ी झूठ होती है बदगुमानी। और कैसे होती है, एक मिसाल दें आपको। एक साहब घर में खाना नहीं पकाए, मियां बीवी सब बाहर आए हुए थे, सैंडविच जानते हैं ना, सैंडविच लेते हुए घर चले गए, सैंडविच लेते हुए चले गए, बच्चों के साथ यहां साथ आए थे, लेके चले गए। बिल्कुल सामने का वाक़ा देखे ना, अब सैंडविच के साथ वो गाजर और फला फला जो सलाद इतनी खट्टी होती है कि वो शायद की हिंद पाक के लोगों के बस की बात नहीं होती, उसके अंदर मिर्च भी होती है। हरी खाया, खाने के बाद जो बचा, हो सकता है उसके अंदर सैंडविच के कुछ टुकड़े भी रहे हों, वो प्लास्टिक में जो थैली में लेके गए थे खाने के बाद रात को, सामने जो छोटा सा डिब्बा रखा रहता है कचरा फेंकने का, उसमें डाल दिया और सो गए। सामने का जो प्लेट था, इधर ये है और दूसरा सामने भरे थे, इनकी आपस में कुछ थोड़ी से चल रहे, अनबन थी, मामूली से अनबन, बच्चों के बारे में थोड़ी से अनबन थी। इस प्लेट वाले ने भी हर सैंडविच लेके गया था, खाया पिया और बचा खुचा जो कचरा था या उसके अंदर मिर्च जो नहीं खा सका था, सलाद वो सब लपेट करके कचरे के डिब्बे में डाल दिया, सो गया। उस बेचारे को कुछ खबर भी नहीं। रात को बिल्ली ने करम फरमाई कर दी, बिल्ली ने आकर के उनको खुशबू आई कचरे के डिब्बे से, इस दरवाजे से निकाल लिया, यहां भी दरवाजे पर था। अब बिल्ली ये सोची होगी यहां बैठ के खाऊंगी तो कहीं घर वाला निकलेगा तो छीन लेगा, इसलिए अरे दरवाजा छोड़ करके और सामने वाले के दरवाजे पे ला करके खाने लग खाई। अब उसको कुछ चीड़ा फाड़ा, मिर्च यहां पड़ी, टमाटर वहां पड़ा, सलाद यहां पड़ी, मूली वहां पड़ी, चलो भाई अपना खा। घर वाले बेचारे कुछ किया ही नहीं उन्होंने। इन्हीं अय्याम सुबह जब वो उठे ड्यूटी जाने लगे, किसी ने मेरे घर के दरवाजे कुछ जादू किया है, तो सोचो इय्याकुम वज़न्न फ़इन्न वज़न्न अकज़बुल हदीस। अब उन्होंने फौरी तौर पर अपनी बीवी को बुलाया, देखो ये एक पड़ोसी से तुम्हारी छनी रहती थी ना, देखो आज काम कर गई ना, अब कोई न कोई खराबी घर में आने, इतना बड़ा मसला बना। अब लाख उनको कहा जाए भाई बिल्ली, अरे किसी के दरवाजे तो बिल्ली नहीं ले गई, हमारे ही दरवाजे में बिल्ली लाएगी। यानी आज तक उनकी मुसालहत नहीं हो पाई, हालांकि मामला क्या है, सिर्फ बिल्ली का काम है और कहीं जादू का चक्कर नहीं। इंसान अगर बदगुमानी पर आमादा हो जाए और हर हर चीज पर एक गुमान कायम करेगा तो ये कभी मुआशरा बरकरार नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न, ऐ लोगों तुम अपने आप को बदगुमानी से बचाओ। किससे बचाओ? बदगुमानी से बचाओ। फ़इन्नज़्ज़न अकज़बुल हदीस, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजरात के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न इन्न बाज़ज़्ज़न इस्म वला तजस्ससू वला यग्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीहि मैतन फ़करहतुमूह वत्तक़ुल्लाह। ऐ ईमान वालों तुम बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो, गुमान करने से बचो। क्यों? ये अक्सर गुमान जो होता है ये गुनाह तक तुम्हें पहुंचा, गुनाह बन जाता है, इसलिए अपने आप को बदगुमानी से बचाओ। तो आप विश्वास फरमाते हैं इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न अकज़बुल हदीस। आगे फरमाया आपने वला तहस्ससू और वला तजस्ससू, यही दो लफ्ज समझना है, और दोनों गुनाह कबीरा है। फरमाया वला तहस्ससू और आगे वला तजस्ससू, ता सीन ता सीन वा बिल्कुल मिला जुला है दोनों जुमरों के अंदर, लेकिन फर्क क्या है, एक जो है जीम है और दूसरा हा, जिसको आमतौर पर कहते हैं एक नुक्ते वाला जीम दूसरा बिना नुक्ते वाला, जो बिना नुक्ते वाला है वो हा होता है और जो नुक्ते वाला है नीचे नुक्ते वाला हो क्या होगा जीम। तो आपने फरमाया वला तहस्ससू और वला तजस्ससू, एक में हा है और दूसरे में जी है। इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्ना ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससू और वला तजस्ससू, ये दोनों लफ्ज बड़े अहम हैं और पहले लफ्ज को समझना है। आन फरमाया तहस्ससू, तहस्सुस मत करो और तजस्सुस मत करो, तहस्सुस भी ना करो और तजस्सुस। वला तहस्ससू, हवदा तहस्सुस ना करो, वला तजस्ससू, हवदा तजस्सुस ना करो। ये लफ्ज तजस्सुस तो आम है, जासूसी करना, क्या करना, जासूसी आम है, किसी के ऐब के पीछे पड़ा रहना, किसी के घरेलू मामलात में पड़ा रहना कि इसके घर में क्या पकता है क्या आता है, किसी के पीछे लगे रहना, ये अच्छा खाता पहनता है और आता कहां से है इसके पास, अब बिना वजह इंसान जो पीछे पड़ा हुआ है इसको कहा जाता है तजस्सुस। क्या कहते हैं? तजस्सुस। लेकिन तहस्सुस क्या है, तहस्सुस को समझना है आज के दर्स में। तहस्सुस मत करो, ये भी तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हराम करार दिया है। तहस्सुस कहते हैं किसी की बातों को कान लगा करके सुनना, हालांकि वो इंसान इस बात को नापसंद करता है कि मेरी बात कोई सुने। ईमान वालों अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, क्योंकि बदगुमानी बहुत बड़ा झूठ है। नंबर दो वला तहस्ससू, तुम किसी की बात सुनने की कोशिश ना करो,
जो आदमी अपनी बात को खुफिया रखना चाहता है, नहीं चाहता कि हमारी बातें कोई सुने, लेकिन ये सब दुनिया की बातों में, अगर कोई सोचता है, मौलवी साहब सोचते हैं मैं दीन की बातें बताऊं लेकिन फला आदमी ना सुने, हा? तो मौलवी साहब के चाहने से दीन की बात सुनना ना जाए नहीं होगा, नहीं समझे। यहां इंसान के अपने निजी मामलात और अपने जाति मामलात के बारे में इसकी वजह मैं कह देना चाहता हूं, वरा तहस, कोई आदमी चाहता है क्या हमारी बातें महफूज रहे, कोई ना सुने, तो कान लगा करके उसकी बातों को सुनने की कोशिश ना करो, ये अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। लेकिन मौलवी साहब नाराज हो जाए, खबरदार मेरे पीछे नमाज ना पढ़ना, या मैं दर्स दू तो दर्स ना सुनना, मेरा खुतबा ना सुनना, मेरी तकरीर ना सुनना, मेरी क्लास में ना आना, ये है काबिले कबूल नहीं है। हाँ, जैसे कि इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ये अपने एक उस्ताद से पता चला कि फला इलाके में बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनसे हदीस पढ़ने के लिए गए, इमाम नसई हदीस पढ़ने के लिए गए, पता नहीं एक दिन उस्ताद से क्या बात हुई, उस्ताद ने कहा कि निकल जाओ हमारे दर्श से और आइंदा तुम हमारे दर्श में आना नहीं, हमारी हदीस न सुनना। तो उस्ताद उठा के वहां कर दिया, लेकिन कोई जाति मामला नहीं था, कोई छुपाने लगा, सबको तो इल्म बता रहा है। एक शागिर्द से नाराज हो गया तो उसको कहा खबरदार हमारी मजलिस में नजर ना आना, हमारी हदीसें सुनना भी नहीं, ये कोई छुपाने की बात तो थी नहीं। इमाम नसीर रहमतुल्लाह अलैह उठ गए, भाई उस्ताद नाराज हो गया है। दूसरे दिन से जब उस्ताद हदीस पढ़ाना शुरू किए तो इमाम नसई ने देखा कि एक दरख्त है, दरख्त पे टेक लगा करके हजरत बैठ जाते हैं। मुहद्दिस जो थे हारिस अल मिस्कीन क्या करते, एक दरख्त था मोटा था, पुराने जमाने में कहा घर कहा मस्जिद में दर्श होता था, मस्जिद छोटी पड़ जाए तो बाग में निकल जाते थे, बड़े बड़े दरख्त होते थे उन्हीं दरख्तों के नीचे बैठ के दर्श होता था। इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उस्ताद मोहतरम बाग के अंदर एक बहुत मोटा सा बड़ा सा दरख्त है और उसी के नीचे टेक लगा करके बैठते हैं, जैसे वो दरख्त शुरू करते पीछे से आकर के दरख्त के आड़ में इमाम ने सही बैठ जाते हैं। खूब बयान करो, जितना बयान करते इमाम ने सही सारी हदीसें नोट कर लेते, कोई हदीस नहीं छोड़ी। जब तक पूरी हदीसें नोट नहीं कर ली, इमाम ने सही ना बाहर सामने आए हैं और न तो उस्ताद को बताया है, साथियों में से पांच साथियों ने देख लिया कि नसई जो है चुपके चुपके सुन रहा है, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि उस्ताद बिलावजह इतना गुस्सा हो गया तो सुनने दे बेचारे को, न किसी शागिर्द ने बताया और न उस्ताद को पता चला। देखे उस्ताद नहीं चाहता था कि मेरी हदीस सुने, लेकिन इमाम नसई ने सुना, क्यों? वो कोई ऐसी बातें नहीं थी कि जिसका उनकी कोई जात से ताल्लुक हो, उनके किसी ऐब से ताल्लुक हो, तो इस किस्म के हालात में कोई मना भी कर दे, नापसंद भी करे, तो उसकी बातों के सुनने में, दीन की बातें सुनने में कोई मुदाका कोई हरज नहीं। हाँ, दुनिया के मामलात हो और किसी का अपना निजी मामला हो, अपनी कोई मखसूस बात हो, नहीं चाहता कि हमारी बातें सुने, तो ऐसी हालात में, इन हालात में किसी की बात को कान लगा करके सुनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। चूंकि आप निशान फरमाते हैं वला तहस्सु, ऐ मुसलमानों किसी की बात को चुपके चुपके कान लगा करके न सुनो और न जासूसी करो, वला तनाजसु वला तहासदु, और इसी तरह से नजस भी न करो और हसद भी न करो, वला तबागदु और खबरदार आपस में बुग्ज भी न रखो, वला तदावरू और एक दूसरे से मुंह न मोड़ो, बल्कि इन तमाम चीजों को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम करा दे दिया, इन तमाम चीजों को छोड़ो, वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन जाओ। और ये बुराइयां जो बयान की गई हैं, अगर इनमें से कोई एक चीज तुम्हारे अंदर पैदा हो गई तो तुम्हारे अपने रिश्ते नाते, अपनी दोस्ती और अपनी भाईचारगी में रखना पड़ेगा, इसलिए इन तमाम चीजों से तुम्हें बाहर रहना चाहिए। लोग शायद कि इसको मामूली समझते होंगे और आप लोगों के ध्यान में कि इस पर कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है जिसकी वजह से इतना इस पर जोर दिया जाए,
लेकिन बुखारी और मुस्लिम की एक दूसरी रवायत जिसको सही हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों सहाबियों ने नकल किया है, इसको सुने तब पता चलेगा कि कितना बड़ा आयब है और कितना बड़ा ये गुनाह है। तीन गुनाह नबी अलैहिस्सलाम साहब ने बयान किया है और तीनों को जरा सुने, और मैं समझता हूँ तीनों हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। नंबर एक, आपने फरमाया कि मन तहल्लम बिहुल्म लम यरा हो कुल फअन युकिद बैन शईरतैन वलन यफअल, नंबर एक। नंबर दो, वमन इस्तमा इला हदीद कौमिन वहुम लहू कारिहून सुब्बती उदुनेही अलानक यौम अलकियामा। नंबर तीन, वमन सव्वर सूरतन उद्दब वकुल्लिफ अन यन्फुक फीहा वलैस बिनाफिखिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये तीन बड़े गुनाह हैं मेरे भाइयों। नंबर एक, अल्लाह के रसूल फरमाते मन तहल्लम बिहुल्म वलम यरहु, जो इंसान कहे कि आज मैंने ख्वाब देखा है और ये ख्वाब देखा, हालांकि उसने ख्वाब देखा, ख्वाब नहीं देखा है, लेकिन सुबह कहता क्या है आज अल्लाह ने मेरे मुझे ख्वाब दिखा दिया है, क्या करे। किसी ने आकर के आपसे कह दिया भाई आज तो अल्लाह ने मुझको ख्वाब दिखला दिया, आपका कुछ बिगड़ा नहीं? बिगड़ा ना आपका कुछ बिगड़ा भाई? बहुत बिगड़ा। किसी ने तो बिगड़ा करके किया है हिंदू पाक का, जितने शिर्क हैं जितने हैं सब का दारों में दार किस पर है? बाबा के झूठे ख्वाब पर नहीं है, इसी ख्वाब ही ने तो बेड़ा करके किया है। किसी ने कहा कि मैं सोया तो ख्वाब में अल्लाह ने हमको बताया कि देखो खबरदार तुम किताब सुन्नत पर अमल न करना वरना वहाबी बन जाओगे, तुम्हारे इमाम की जो फेका है हमारी सारी हिमायत इसी एक इमाम के साथ है, इसलिए तुम भी इस इमाम की तकलीद करते रहना। हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ताला को क्या परी किया है ख्वाब में बताए? अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह उसके रसूल के इताअत करो और ख्वाब में आके क्या बताया कि नहीं उनको छोड़ो, अगर किताब सुन्नत पर अमल करने लगोगे तो भटक जाओगे जैसे मिर्ज़ा मुराद अहमद भटका था, इसलिए मजबूती से बेहिस्ती देवर को थाम लेना। अरे अल्लाह के रसूल इसीलिए आएंगे? सोचने की बात है। ये जो हमारे ख्वाब पैदा हुए हैं मेरे भाई, किसी ने कहा अल्लाह के रसूल ने हमसे कहा शराब पियो, क्या पियो? शराब पियो। किसी ने ख्वाब के अंदर ये बयान किया अल्लाह ताला ने हमको कहा तुम इमामिया बन जाओ तो तुम्हारे बच्चे को शफा मिल जाएगी। अरे अल्लाह के बंदो ख्वाब ही का तो जमाना ये है, सबको ख्वाब समझ गया ना, और ख्वाब के साथ एक बशारत हो गई है। अब लोग ख्वाब को ख्वाब नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? बशारत। और कैसे बशारत? अभी तीन दिन कबल एक साहब ने बताया कि हमारे कोई बहुत बड़ा इज्तिमा होता है रमजान के आखिरी अशरे में, एक शहर का नाम लिया हिंद पाक का मशहूर शहर, वहां 20,000 आदमी इकट्ठा होते हैं। कितने? 20,000 आदमी इकट्ठा होते हैं। कहने कि मैं भी मुझको भी लोग ले गए वहां एतकाफ करने के लिए, तो वहां एतकाफ में देखा कि एक साहब बादू बैठे हुए हैं। क्या हुआ? अल्लाह ताला ने 500 मरतबा नबी को ख्वाब में हमें दिखलाया है। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? 500 मरतबा। बस सोचो मेरे भाई ये क्या क्या ख्वाब है। आज ख्वाब ही में सारी चीजें मालूमी है, ख्वाब की कोई हकीकत कोई अहमियत नहीं होती। बाई इत्तेफाक उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते मन तहल्लम बिहुल्म लम यरहु, जिसने सुबह सवेरे कोई ख्वाब बयान करना शुरू किया हालांकि अल्लाह हालांकि उसने ख्वाब देखा नहीं है, लेकिन लोगों तो कहता है क्या अल्लाह ने हमारे हमें ख्वाब में बताया, अल्लाह ने ख्वाब में दिखलाया, अल्लाह के नबी ख्वाब में आए थे ये कह करके गए। अल्लाह के बंदो ख्वाब से बनते बनते अब जब भी चाहे PIA का टिकट भेज करके अल्लाह के रसूल को कब्र से कहां बुला ले, लाहौर बुला लेते हैं। है कि नहीं? कैसी थे मैं समझता तो कोई नहीं इनकार कर सकता।
और ये शब्द कहते इतने बड़े पाकिस्तानी मुल्क में एक ही मेरा प्यारा बेटा है तुम हो बस। जरा सोचो हिंद पाक के अंदर दो इदारे हैं, खड़े में अल्लाह के बंदो क्यों झूठ बोलते हो ख्वाब के नाम पर? दो इदारे हैं, दोनों के बारे में ख्याल है कि इसका नक्शा अल्लाह के नबी आए थे बना करके गए हैं? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी रहे सब ये नक्शा बनाने के लिए आए थे, एक हिंदुस्तान के अंदर दूसरा पाकिस्तान के अंदर है। अल्लाह के बंदो इन चीजों को खत्म करो। आप साथ नमाते मन तहल्लमा बिहुल्मिन, जिसने कोई झूठा ख्वाब बयान किया हालांकि उसने ख्वाब देखा नहीं है, बतकल्लु उसने बयान किया, तो कुल लेफा यौमल कियामत दो जौ लाए जाएंगे। जो जानते हैं जौ शरीर नहीं जानते होंगे, गंदुम जानते हैं जौ, अब समझे ना, गंदुम के साथ की तरह जो जौ होता है ना, नहीं ज्वार अलग है वही में, जौ अलग है वही में, असल में हम सब लोगों को रेडीमेड मिलता है ना, इसलिए पता नहीं है। ज्वार अलग है, गंदुम अलग है और जौ अलग है, जिसको शरीर कहते हैं। हिंता हिंता शरीर, समझ गए ना, और दर्रा, ये जो ज्वार जिसको जिसकी रोटी यहाँ खाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? ज्वार, अरबी में दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। और एक है हिंता, जिसको हम लोग गंदुम कहते हैं, और एक है जौ। जौ जो होता है इसी गंदुम की तरह होता है, लेकिन गंदुम से लंबा और उस पर मोटा सा एक छिलका रहता है, कवर चढ़ा रहता है। और जितने अनाज और गल्ले पैदा होते हैं उनमें सबसे ठंडा जो है वो, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हमने सुना है कि हाथ जौ का पानी मिलता है, क्या नाम है उनका है? अब सबको समझ में आ जाएगा क्या नाम है उसका, बारली देख जाते ना, वो क्या है जो है। तो अल्लाह के रसूल ने इतना साफ फरमाते हैं कि जिसने झूठा ख्वाब गढ़ करके अपने से लोगों के सामने पेश किया और कहा अल्लाह ने हमें ये ख्वाब दिखलाया है, कयामत के दिन अल्लाह उससे नाराज होगा और दो लंबे लंबे जो पकड़ाएगा, कहेगा इन दोनों में गांठ दो, बांधो इनको। दो रस्सी हो तो रस्सी में तो गांठ दी जा सकती है, लेकिन दो जौ हो तब, और कभी तजर्बा करना, यहां से जाने के बाद बासमती लंबा वाला चावल ले लेना और यहां से जाने के बाद सुबह तक कोशिश करना कि दोनों में कैसे गिरा देंगे, समझ गए ना, ये अजाब होगा उसको, फिर इसके बाद जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। क्यों? लोग ये कहते हैं, एक आपको एक तो यह झूठ है, आम हालत में झूठ, इंसान अभी झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला के नाम पर नहीं बल्कि किस पर झूठ बोलता है, अपने भाई हमने ऐसा किया और ऐसा किया, लेकिन ख्वाब में जब झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला के नाम पर झूठ बोलता है, इसीलिए ख्वाब में झूठ बोलना बेदारी के हालत में झूठ बोलने से बदतरीन गुनाह करार दिया गया है। और कहा गया वलई अफाल, फरिश्ते दोनों तरफ से डंडे लेके खड़े होंगे, तूने झूठा ख्वाब या झूठी करामत बयान करके इतनी बड़ी कौम को गुमराह किया था, समझ गए ना, तुमने इतनी बड़ी कौम को गुमराह किया झूठे ख्वाब के जरिए। किसी ने कह दिया अल्लाह के नबी आए थे ख्वाब में बता दे कि हमारा नायब है, क्या है, अब ऐसा नायब हुआ कि 40,000 आदमी तजल्ली देखने अजमेर में गए और मालूम पड़ा खबर किसने दिया है, बुतपरस्त काफिर ने दिया है, समझ गया ना, झूठे ख्वाब पर 40,000 आदमी कहा जा रहे हैं अजमेर। ये झूठे ख्वाब बयान करने वालों को अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले करेगा और दो चौ पकड़ा देगा और कहेगा इनमें गिरह लगाओ, अल्लाह कोशिश करेगा लेकिन दो चौ को आपस में गिरह बंदी नहीं कर सकता, और वही फरिश्तों के हवाले किया जाएगा जो पिटाई उसकी होगी। अल्लाह ताला सबको इस बुराई से बचाए। क्या ख्याल है भाई, शिर्क का बहुत बड़ा दारोमदार झूठे ख्वाबों पर है कि नहीं? वल्लाह मैं कहता हूं किसी की जरूरत हो तो हमसे आकर की किताब लेकर के जाए, जरा देखो किस तरह से झूठ बोलते हैं। किताब लाहौर की छपी है, मजाकुरा दो किताबें हैं, मुबशरात साफ लफ्जों में ऐसे लिखा हुआ है कि मैं 21 रबीउल अव्वल मसलन तारीख थी, मैं
روض اقدس پر بیٹھا مدینے میں تھا. اوڑھا گئی, نیند لگ رہی تھی, آدھا سو جا تھا اور آدھا جاگا تھا. اور کہاں مراقبے میں تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے قبر پر. اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے اور کہا, یہاں کیوں بیٹھے ہو تو, یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ایک بزرگ کا نام لیا اور فرمایا, اس بزرگ کی جا کر کے خدمت کرو, اللہ کی قسم روزانہ ظہر کی نماز میں بھی ان کے کمرے میں آ کر کے ان کے پیچھے پڑھتا ہوں. ہاں, اور تم یہاں کیا بیٹھے ہو؟ روزانہ اپنے ہاتھوں سے کھچڑی پکا کر کے میں اس بیٹے کو کھلاتا ہوں, وہاں جاؤ خدمت کرو. میرے بھائی, ایسے خوابات آج ہمارے ہاں کتابوں میں اور تحریری شکل میں آ جائے اور مارکیٹ میں پیش کیا جائے, انسان اپنا انجام نہیں سوچتا, اپنا انجام نہیں سوچتا. من تعلم بحلم ولم يره كل يوم القيامة أن يوكل بين شارتين شعيرتين ولم يوكل. لاکھ کوشش کرے گا کہ دو چوک کے درمیان گرہ دے دے, لیکن گرہ دینے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی. دوسرا گناہ, ومن استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون. اور جو انسان ایک آدمی اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے اہل عیال کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوست احباب اپنے کسی رازداں کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کوئی میری باتیں نہ سنے, لیکن کوئی انسان کان لگاتا ہے یہ کیا باتیں اپنے سے کر رہا ہے, حالانکہ بات کرنے والا نہیں چاہتا کہ میری باتیں سنیں, لیکن تحسس کرنے والے, جاسوسی کرنے والے, چگل خور, لگائی بجھائی کرنے والے, ہمارا پر حتب کا کردار ادا کرنے والے کان لگاتے ہیں. منہ دوسری طرف ہوگا لیکن کان ادھر ہوگا. ایک صاحب کہنے کی, میں الحمدللہ ہمیں تو جب کہو جس کی باتیں کہو میں سن کر کے آ جاؤں, لیکن آج تک کوئی نہیں پکڑ سکتا. میں کہا, وہ کیسے؟ کہاں کی جاتا ہوں, دکاندار پہلے چائے بناتا ہے, منگاتا ہے چائے, کیا بھائی ذرا کمر میں کچھ تکلیف ہے, کہتے ہیں لیٹ گیا. جب میں نے خراجے لینا شروع کیا تھا سر, تو پتا چلا کہ ہاں آپ اپنی باتیں جب بات کر کے جانے لگیں گے تب اٹھائے گا. میاں میرے بھائی, وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ آج تم بناوٹی سو رہے ہو, لیکن رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ تم کتنا گھناؤنا کردار اور ادا کر رہا ہے. سدا کیا ہوگی؟ آپ رشاد فرماتے ہیں, ومن استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون. جو انسان کسی کی باتیں سنتا ہے, حالانکہ لوگ نہیں چاہتے کہ میری باتیں یہ سن پائے, لیکن کان لگا کر کے سنتا ہے, چاہے سن پائے یا نہ سن سکے, لیکن کوشش تو کیا کہ نہیں کیا, چاہے سن سکا یا نہ سن سکا, لیکن اب مجرم ہو گیا. سزا اس کی کیا ہے میرے بھائی؟ کس سے سنتا ہے؟ کان سے. کان سے سنتا ہے نا. اب سزا ذرا سنو, وہ انسان جو غیروں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے, قیامت کے دن ثم فی اذنہ الآنک یوم القیامۃ, اس کے کانوں میں قیامت کے دن شیشے کو جہنم کے آگ میں گرم کر کے اس کے کان میں ٹھوک دیا جائے گا اور اس کے کان میں بھر دیا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ یہی کان ہے جس کے ذریعے تو غیروں کی باتیں چھپ کر کے سنتا رہا. آپ ذرا بتائیں, آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, سمجھ گئے نا, ساس بہو کا تھوڑا سا جھگڑا ہو, دیوران اور جتان کی تھوڑی سی آمد کی چکر ہو, آپ اگر ایک عورت یا ساس سسر کے پاس پہنچ گئی, یا میاں بیوی اپنا کہیں اکجا ہوئے, اب سب سے پہلے ساس صاحب اللہ کان ہے, دیکھیں دروازہ تو بند کر لیکن کان لگا کے سنو, بیٹے کیا میرے بیٹے سے کان بھر رہی, کیا کیا شکایت کر رہی ہے. اللہ کے بندے اگر نہ سنے ہوتے وہ کیا بتا رہی ہے, شاید جھگڑا نہ ہوتا گھر کے اندر, لیکن تم نے زبردستی کان لگا کر کے سنا اور صدا یہ ملی کہ تیرا گھر جو ہے لڑائی کی وجہ جہنم بن گیا ہے, نہ تجھے سکون, نہ باپ کو سکون, نہ بیٹے کو سکون, نہ تو بہو کو سکون. اور اگر ایک کان لگا کر کے سننے کی کوشش نہ کرتے تو شاید اتنی بڑی جھگڑے اور لڑائی کی نوبت گھر میں نہ آتی. اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, جا
जो कान अपना लगाया है उस कान में जहन्नम के अंदर शीशा फिर गर्म करके क़यामत के दिन अल्लाह ताला फाड़ देगा। ये सदा है जो तू गैरों की बातें सुना करता था, हालांकि गैर लोग नहीं चाहते थे कि तुम उनकी बातें सुनो। तीसरा गुना, वमन सव्वर सूरतन कुल्फा अन यनफुख फीहा, अगर किसी ने कोई तस्वीर बनाई है, क्या बनाई है? तस्वीर, लेकिन तस्वीर से मुराद जानदार की। अगर किसी ने किसी जानदार हैवान की जी रूह की तस्वीर बनाई है, बनाने के बाद खड़ा तो कर दिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएगा, आप हैं जो मेरा मुकाबला कर रहे थे, मखलूक बनाने वाला मैं, तूने भी बनाया, ऐसा करो मैं तो बनाया तो उसके अंदर रूह डाल दिया, तूने बनाया था रूह डाल करके हमें दिखला, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मुकल्लफ करेगा कि इसके अंदर तूने इस जानदार को पैदा किया है तो इसको जिंदा करके दिखा, इसके अंदर रूह डाल और जिंदा करके दिखा, हम देखते हैं कैसे जिंदा करता है। ये तीन गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया, वले अल्लाह फरमाते हैं वले ईसा बिना फिकिन, लेकिन जिंदगी गुजर जाए हशे के मैदान में खड़े खड़े, वो उसके अंदर रूह नहीं डाल सकता। जब रूह नहीं डाल सकेगा तो आखिर में अल्लाह ताला फरमाएंगे खुदू हो फगुल्लो सुम्मल जहीम सल्लो। इसीलिए नबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सुनन के अंदर नकल किया कि क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर से एक बड़ी लंबी से गर्दन निकलेगी और वह गर्दन पूरे हश्र के मैदान में लोगों के ऊपर ऐसे घूमती होगी और कहेगी इन्नी उक्किलतु बिफरास, ऐ लोगों हमें तीन किस्म के गुनहगार और मुजरिमों के बारे में हुक्म दिया गया है, जहां हो वहीं से उन्हें उठा करके जहन्नम के गड्ढे में डाल दो। वो तीनों किस्म के लोग कौन है? नंबर एक, अल्लज़ी यदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरों को भी माबूद बनाता है, बुलाता है, उठते बैठे क्या कहेंगे या गौसे, सबको छोड़ दे लेकिन या अली अलमदद तो नहीं छोड़ेगा मुसलमान, या गौस छोड़ देगा लेकिन या अली अलमदद तो नहीं छोड़ेगा। ये पहला मुजरिम है, अल्लज़ी यदउ मा अल्लाह इलाहन आखर। नंबर दो, आपने शायद फरमाया वकातिलुन नफ्स, जिसने किसी मुसलमान को नाहक कत्ल किया है, कातिल जहां हो वहीं से उठा लिया जाए। नंबर तीन, वबिल मुसव्विरीन, जो दुनिया में तस्वीरें बनाने वाले थे, क्यों तस्वीरें तो बना ली लेकिन उसके अंदर जान पैदा नहीं कर पा रहे हैं, अब जहां खड़े होंगे जहन्नम से निकली हुई गर्दन वहीं से उनको उठाएगी और जहन्नम के गड्ढे में डाल देगी। अल्लाह ताला इन तीनों गुनाहों से बचाए। हजरत सुफियान इब्न मुखरिस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अब मैं जा रहा था सामने से अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अनहो मिल गए हमें, मेरे भाई ये आखिरी हदीस से जो कान लगा करके दूसरों की बातें सुनना है, दरवाजा कर ले, दीवार नीचे होगी तो हो सकता है कि दीवार में कान चिपका कर देखें घर में क्या बात हो रही है, यही तहस्सुस, ये कितना बड़ा गुनाह इस हदीस से जरा सुने। इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, यानी हदीस मुत्तफक अलैह बुखारी और मुस्लिम की, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का हाथ पकड़ा सुफियान बिन मुहरिज ने और पकड़ करके एक किनारे ले गए, कहने लगे या अब्दुल्लाह कई बसमेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल फिन नजवा यौमल कियामा, वो हदीस जरा दोबारा सुना देते मुझे भूल गई है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो सरगोशी करेगा चुपके चुपके अपने बंदे से बात करेगा, तो हदीस कैसी है जरा बताओ, ये कौन कह रहा है? सुफियान बिन मुहरिज, और किससे कहते हैं? अब्दुल्लाह इब्न उमर से, कहते हैं या अब्दुल्लाह कई समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल फिन नजवा यौमल कियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसे चुपके चुपके बात करेगा, सरगोशी करेगा, वो हदीस कैसी है सुनाओगे? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है, क्या तफसीर उसकी? عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سفیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے چپکے چپکے بات کرے گا اور کیسے سرگوشی کرے گا میں تم کو بتاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل یدن المومن, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک مومن بندے کو اپنے بالکل قریب لائے گا, اپنے بالکل قریب لائے گا, حشر کے میدان میں کہیں بھی کھڑا ہوگا, آواز لگائے گا فلا ابن فلا کہاں ہے پہنچ جائے جلدی. نام اعلان سنتے ہی جس آدمی کا نام لیا گیا اور سیدھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا, جب آگے کھڑا ہوا تو اللہ ان اللہ یدن المومن یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا اور قریب آ جاؤ, بہت قریب آ جائے گا. جب بالکل قریب آ گیا اب سارے حشر کے میدان کے لوگ دیکھتے ہیں اس کا نام اللہ نے لیا ہے, دیکھو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, سب لوگ ٹکٹکی مارے نگاہ کھولے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, دیکھو پورے اولین مراخرین دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب آ جائے گا تو الہال آدمی ایک پردہ گھیر دے گا, ایک لمبا سا پردہ گھیر, اور ایسا پردہ کہ اب اس بندے کے ساتھ اللہ کیا بات کر رہا ہے کوئی نہ سن سکتا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. پردہ گھیر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اور قریب آؤ, جب بالکل قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ اب سرگوشی کس کو کہتے ہیں, اتنا چپکے سے کرو کوئی دوسرا نہ سن سکے. اب اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میاں تمہیں اتارف ذنب کذا, فلاں گناہ تم نے کیا تھا پہچان یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فلاں گناہ تم نے کیا تھا یاد ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھول سکتا انسان اور انکار بھی نہیں کرے گا. اچھا اتارف ذنب کذا, فلاں گناہ بھی تم نے کیا تھا فلاں موقع پر یاد ہے, اور بعض روایتوں میں آیا اللہ تعالیٰ سے بالکل پوچھے گا میاں یہ گناہ تم نے فالت یوم کدا بے مکان کدا فی ساعت کدا, یہ گناہ تم نے فلا دن فلا جگہ اور فلا ٹائم تم نے یہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ ایسا گناہوں کا اقرار کروائے گا تو بندہ انکار نہیں کرتا کہتے لہٰذا ہاں یہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اتارف ذنب کدا, فلا گناہ کیا تو بھی تجھے یاد ہے, بندہ کہتا اللہ تعالیٰ ہاں وہ بھی یاد آئے, حتی اذا قررہ بذنوبہ, یہاں تک کہ اللہ اس بندے سے اتنے گناہ کا اقرار کروائے گا کہ رآ فی نفسہ انہ قد ہلک. اب بندہ سوچتا ہے اب اللہ تعالیٰ اگلا گناہ یاد کرائے اقرار کرائے نہ کرائے, لیکن اب تو بچنے کا کوئی چانس باقی اتنے گناہ کھول کر کے اللہ نے رکھ دیا, اب اگلے گناہ چاہے اقرار کرائے پوچھے یا نہ پوچھے اب تو ہمیں جہنم میں جانا ہی جانا ہے, اب ہمیں نہ گھومے اب نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کیا ہے نا تو نے, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں, جب بندہ خوب پریشان ہو گیا مایوس ہو گیا تو اس کے کان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا, اتنے گناہ تو نے کیے ہیں لیکن دنیا میں ہم نے ان تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا. بندہ کہتا اللہ تعالیٰ سب تیرا کرم ہے, دیکھا تھا تو نے سارے گناہوں کو دیکھا لیکن تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا چل وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ, دنیا میں پردہ ڈالا تھا تو آج آخرت میں ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب بندہ خوش, اب تو خوش ہو گیا, پہلے تو بڑا ڈرا تھا ابھی وہ کھڑا ہے مارے خوشی کے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ثم یؤتی کتاب حسناتہ, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میں نے اس بندے کے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا اور آخرت میں معاف کر دیا, میں آمان لاؤں دائیں ہاتھ میں پکڑا دو اس کے, دورہ ہوا فرشتہ گیا اور نام آمان لا کر کے اس کو دے دیا. لیکن اس کے برخلاف وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ, لیکن کفار اور منافقون جو ہوں گے میرے بھائی ان کا انجام کیا ہوگا, یہ ابھی حشر کے میدان میں موجود ہوں گے, اتنے میں کہا جائے گا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ گواہی دینے والے کہیں گے دین کے نام پر جھوٹ بولا, اللہ نے ہمیں یہ بتایا, نبی نے یہ بشارت دی, اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں خواب میں بتایا, حالانکہ اللہ نے کچھ بتایا نہیں تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین, سن لو لعنت ہے ان ظالموں پر جنہوں نے دنیا میں اللہ اس کے نبی کا نام لے کر کے لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلائی. تو یہ تین گناہ تھے جس میں خاص طور سے عرض کرنا یہ تھا کہ غیروں کی باتوں کو ناپسند کرنے کے باوجود سننے کی کوشش کرنا, تحسس کرنا شریعت نے ہمارے اوپر ناجائز و حرام کرا دیا ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں, وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے, وہ اپنے دوست سے کیا بتا رہا ہے, وہ اپنے باپ سے کیا بتا رہا ہے, وہ اپنے شوہر سے کیا بتا رہی ہے, بھائی اپنے بہن سے کیا بتا رہا ہے, ان تمام وہ نہیں چاہتے, اسی لیے تو بند کمرے میں گفتگو شروع کیا ہے. وہ آپ کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے, اسی لیے تو ہاتھ پکڑ کر کے دوسری طرف لے جا کر کے بات کیا ہے, لیکن اس کے باوجود جاسوسی کرتے رہنا, کان لگا کر کے ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ کرا دیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت دے دی ہے. اسی لیے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے قرار دیا گیا کہ غیروں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے بچائے ہم کو اور آپ کو جن کا تذکرہ اس درس میں ہوا ہے, اور اگر ہم سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انسان بشری تقاضے کے مطابق کچھ نہ کچھ اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو پردہ ڈالے. اور جس طرح سے ہم لوگ یہاں اپنا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر رکھا ہے, آئندہ بھی صراط مستقیم پر ہم تمام لوگوں کو قائم رکھیں. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ. کرنے کی دلیل کسی حدیث سے ثابت ہے, ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی روایتیں حدیثوں سے ثابت ہیں. اس سے پہلے میں نے شاید بتایا کہ دو کتابیں ہیں اور دونوں کتابیں تقریباً اردو میں ہندوستان کے مبارک پور شہر سے نکلی ہوئی ہیں, المکان الحسنی, اور دوسری کتابیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے. اور یہ تقریباً مصافحہ جو ملانا ہے وہ ایک ہی ہاتھ سے ملانے کی روایت ہے. مصافحہ رہی بات بیعت کی, تو اس میں نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی ایک ہی ہاتھ استعمال کیا ہے, دو ہاتھ استعمال نہیں کیا ہے. سر پر جو نقلی بال پہنتے ہیں کیا اس پر مسح کرے تو وضو ہو جاتا ہے؟ ایک ہے نقلی بال ٹوپی کی طرح باہر جب چاہیں نکال کر کے رکھ دیں اور جب چاہیں لگا لیں, اس پر تو سر پر مسح کرنا چاہیے, سمجھ گئے نا. اور اگر بال بالکل, میں نے سنا ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, بالکل اندر دشن, ہاں تو اس کو میں نے سنا ہے بہت تکلیف کے ساتھ اندر اس کو کیا کروا ٹچنگ, ہاں اب دوبارہ اتنی مشکل سے اس کو نکالے نہیں, اسی پر آپ مساح کر لے کے ہو جائے گا. شرط ہے کہ بال پاک ہو, کسی ناپاک چیز کا نہ ہو. اسکول میں جو تصویر بنا کر پڑھایا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے بھائی؟ جانداروں کی تصویر جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے, حکم تو سب کا برابر ہے, سمجھ گئے نا. وہ بھی جائز نہیں, وہ بھی ناجائز ہے, سمجھ گئے نا. لیکن اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس برائی سے ہم تمام لوگوں کو نجات دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے لوگوں کو ذہن میں ڈال دے کہ اسکولوں سے ساری چیزیں نکال کر کے تصویر وہ بنائے جو غیر جاندار کی اسلام نے اجازت دیا ہے. لیکن جانداروں ہی کی ہم لوگ کہتے بناتا نہیں, کلر کرتا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم بنواتے نہیں بلکہ کیا کرواتے ہیں اس میں, ہاں کلر بھرواتے ہیں. بنا بنایا تو پہلے سے میرے بھائی, وہ سب بنانا ہی ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسکول میں پیچھے کو میوزک سنا کر بچے کو ہونا چاہیے. بچے کو میوزک سنا کر پڑھایا جاتا ہے تو کیا کرے, سبھی اسکول میں یہی ہوتا ہے.
इल्म हासिल करें, समझ गए, इल्म हासिल करें, अगर इस सब्जेक्ट से आप बच सकते हैं तो बचें, दूर रहें, हो सकता है कि इख्तियारी चीज हो, हो सकता है ये इख्तियारी चीज हो, अगर बच सकते हैं तो बचें, अगर तालीम उस मदरसे के अलावा किसी दूसरे मदरसे में बगैर उसके मिल जाती है तो वहां पढ़ाएं, और अगर कोई चांस नहीं है तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस हा के तहत आप मजबूर हैं, लेकिन अगर बचपने में सीख रखे हैं तो उसको आइंदा चल करके इस्तेमाल ना करें जी। अगर कोई आलिमा औरत का बयान केसित में हो तो मर्द हजरात उसको सुन सकते हैं कि नहीं? नहीं सुनना चाहिए भाई, समझ गए ना, नहीं सुनना चाहिए, खास तौर से जब मर्दों की भी केसतें मौजूद हैं, मर्दों की किस्तें भी मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं हजरत आयशा तो सबक पढ़ाया करती थी, अल्लाह के बंदो हजरत आयशा का मामला अवलन तो उम्महातुल मोमिनीन में से थी, दूसरे ये कि अल्लाह के ताला ने इरशाद फरमाया था ऐ अजवाज मुतहरात तुम घरों ही में रहो बाहर न जाओ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम घर में जो अमर कहते हैं और जो आयात अघर में नाजिल होती जो हदीस आप बयान करते हैं वो बाहर वाले नहीं सुनेंगे, उसको कौन सुनेंगे, घर वाले। तो अब लाजमी चीज है नबी अलैहिस्सलाम की वो अहादीस आपके वो आमार आपके वो तौर तरीके जो घर में होते थे अगर उसको अजवाज मुतहरात नहीं बयान करती अल्लाह ताला उनके जिम्मे ना लगाता और सहाबे कराम उनसे आकर के ना पूछते ना सीखते तो नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ बाहर वाली जिंदगी तो उम्मत को मिलती और अंदर वाली जिंदगी आपको नहीं मिल सकती थी। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को सांबर क्यास नहीं किया जा सकता। कोई शख्स अपनी जकात के पैसों में मस्जिद या मदरसा बनाना चाहता है तो क्या जायज है? मदरसा बनाना जायज है, मस्जिद के मुताबिक इतना एहतियात करना चाहिए। ये मस्जिद में आमतौर पर अगर साहिबे हैसियत हैं तो मस्जिद को जकात के माल से ना बनाई जाए, लेकिन अगर किसी ऐसे इलाके में गरीब लोग आबाद रहते हैं जहां मस्जिद तामीर करने और बनाने की उनके अंदर ताकत नहीं है और इलाका गरीबों और जरूरतमंदों का है, उन इलाकों में अगर ज़कात के फंड से मस्जिद बना भी दी जाएगी तो उसमें कोई मुदाका कोई हरज नहीं होगा, क्योंकि उसका मसरफ भी गरीबों ही का है। बैंक का वो पैसा जो सालाना सूद की शक्ल में जमा होता है उसको कोई तालिब इल्म को दे सकते हैं किसी इनाम या अच्छा भाई और अगर तालिब इल्म पढ़ रहा है अगर गलत तालीम नहीं हो रही है, गलत तालीम नहीं, तालीम दीनी तो होगी नहीं, चलो कम से कम दुनियावी कर रहा है लेकिन अपनी रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो अगर इन हालात में वो पढ़ने का शौक रखता है और अपने सूद वाली रकम उसको दे देंगे तो उसमें कोई मुनाका कोई हरज नहीं, लेकिन अगर वो गलत तालीम हासिल कर रहा है जो शरान नाजायज और हराम हो और बुरी है, अगर आपको देखते हैं कि अगर मैं अपनी ज़कात का पैसा दे दूंगा तो वो उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी, तो ये तआमनु अलल बिर्र व तक्वा नहीं बल्कि वला तआमनु अलल इस्मे वल उदवान है, उसको पैसा नहीं देना चाहिए वरना आप बुराई पर मदद कर रहे हैं। हो सकता है आप ना देकर शायद वो गलत तालीम हासिल करने से बाज रहता। सलफ सालहीन किसे कहते हैं? सहाबे कराम ताबीन इज़ाम इन्हीं को सलफ सालहीन कहा जाता है। इमाम बुखारी अबू हनीफा इमाम मालिक इमाम शाफी अहमद बिन हम्बल कौन कहां पैदा हुए, कहां इमामत की और कहां तदफीन है बतलाएं, अल्लाह हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा में है, इमाम शाफी मिस्र में है, इमाम मालिक मदीनतुल मुनव्वरा जन्नतुल बकी में है मदफून है और इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद में है। इमाम बुखारी खरतंग में है। इमाम बुखारी कहाँ है? खरतंग, बुखारा के करीब एक शहर था। चूंकि बादशाह उनसे नाराज हो गया था, उलमा इशू ने इमाम बुखारी को बहुत तंग किया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहां से नाराज होकर के गांव वालों से निकल गए थे, तो खरतंग एक जगह थी और आज भी है, वहीं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और वहीं उनको दफन किया गया, क्योंकि उस जमाने में लाशों ने यहां से वहां मुंतकिल नहीं किया थी जैसे आज की जा रही है। बस मेरे ख्याल से ये भाई जी जी हाँ हाँ अल्लाह आपको दया खैर दे, समझ गए ना भाई। दुश्मन और काफिरों के पास जासूसी के लिए जाओ, वो अपनी बीवी से क्या बात करता है, अल्लाह के नबी इसको कभी इसके लिए नहीं जासूस मुतायन किया। फला सास और बहू आपस में क्या करते हैं, जासूसी यानी दिफाई अंदाज से सियासी तौर पर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या साजिशें करें, उसको आप देखने के लिए। मेरे पास समझ गए ना, वहां क्या था, इस्लाम का तहफुज मकसद था। और यहां जो बात चल रही है, वो जिन इंसान के आपको कोई उससे सरोकार नहीं, मामला सिर्फ क्या है, इंसान के अपने निजी मामला है। ये भाई बैठे हुए हैं, इनका पैर कट गया हुआ है और ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मुसाइदे की जरूरत है, तो आप खुदा से जो भी हो सकता है भाई का ताउन करें। इंशाल्लाह ये मरीज थे बेचारे, एक पैर इनका डॉक्टर ने काट दिया है, तो पाकिस्तान जाने का मसला है, आप लोगों से जिससे जो भी हो सकता है होता हम करें। सुभानक اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين